रहते हैं जब वो कुछ ही टाइम में सारा काम करते हैं, आप कितने तो जरूरत होती है क्या होता है क्या
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीर बन चारी यमुना यमुना तीर बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री जन वल्लभ निर्भर भारी बोलो जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री जन वल्लभ निर्भर भारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपा प्रभुपा
समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश जी की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी की श्री श्री निताई गौर सुंदर की श्रीमद भगवद गीता जथारूप की ताई गौर हरि प्रेमानंदे सब्जेक्ट इज मना था बोर्ड में कुछ लिखा था क्या
जीवन की कुंजी
कुंजी
रिलेटेड उसी से आप
ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज रुक्मिणी द्वारिकाधीश के भवन में आप लोग जो श्रद्धालु भक्त वृंद मातृवृंद साप्ताहिक जो कार्यक्रम जो आपका अभी सायंकालीन चल रहा था आज से प्रथम बार दोपहर में हो रहा है मध्यान्ह, तो इसमें आप लोग जो पधारे हैं सबको इस्कन द्वारका श्री श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश के तरफ से सभी को स्वागत संवर्धना है। और श्री श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश श्री निताय गौर सुंदर श्री जगन्नाथ जी के चरण कमल में ये प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो सब अभी आज आए हैं इधर बैठे हैं सभी को उनके विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। तो भगवद गीता ऐसे हम जानते हैं, भगवद गीता का साधारण अर्थ है भगवान का द्वारा गाया हुआ गीत। एक गीत जो भगवान ने गाया था, कोई गीत गाता है जब उनको सुख बहुत ज्यादा महसूस होता है, मजा आता है ना, नहीं तो इसलिए आनंद के मारे कोई गीत गाता है। दूसरा गीत गाता है रो करके, जैसे कोई स्त्रियां कभी शादी करके जब जाते हैं ना वापस ना, जो घर से जाते हैं विदाई होकर के, तब ये प्रथा तो है तो रोना पड़ेगा, नहीं रोएगा तो हटी दिस, विदाई होते समय रोता ही नहीं, तो मतलब दुख में भी रोना और सुख में भी रोना, रोना का बिना हर काम नहीं चलना, क्योंकि हम जब आए दुनिया में से कैसे आए, रो के आए, जब जाएंगे रुला कर जाएंगे, ये हमारा सिस्टम है। जो ओपनिंग और एंड दोनों जब रोना में ही होता है, ओपनिंग और क्लोज, और हम सोचते हैं दिन भर हम हंसेंगे पूरा जिंदगी भर, कैसे संभव हो सकता है। तो लेकिन भगवान जो गाए गीत ना तो ऐसे खुशी से गाए ना रो करके गाए, उन्होंने गाए ये गीत। उनके पीछे रथी अर्जुन, उन्होंने तकलीफ में पड़ गए थे, फंस गए थे, इसलिए भगवद गीता का प्रथम अध्याय को कहा गया अर्जुनस्य विषाद योग। वो विषादग्रस्त थे, क्या विषाद था उनका कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे मैं क्या करूं, ये तो मेरे सब परिवार के लोग हैं, सब पहचान के लोग हैं, उनका साथ लड़ूं, अरे जिसका साथ एक बार भी ऊंची आवाज से बात भी नहीं किया, उनके सामने खड़े होकर जवाब भी नहीं दिया, आज मैं उनके ऊपर अस्त्र चलाऊं, कैसे हो सकता है जेंटलमैन। पाप भय कुलक्षय कृतंग दोसंग मित्र दोहो च पातकम, नाना प्रकार दोष दे करके अब जो लड़ाई करने के लिए कई दिन से तैयार होकर आए थे, अब हाई फीवर, बोलते मैं नहीं लड़ूंगा। लड़ूंगा नहीं, मतलब लड़ाई करने के लिए इतना सारे करके व्यवस्था, मुझे बोला कि गाड़ी ले चलो बीच में, तो ये क्या कर रहा है? तो इससे बुरी तरह से फंस गए थे अर्जुन। अर्जुन जैसे महा धनुर्धर योद्धा, भगवत गीता वर्णन करता है, गांडीवं संस्रते हस्तात् त्वक चैव परिदह्यते, उनका हाथ से उनका राइफल खिस गया, फिसल गया, गांडीवं खस के नीचे गिर गया, इतने टेम्परेचर हुआ कि बोलते हैं हाथ नहीं लगा सकते, जलन हो रहा है शरीर में बिल्कुल। रथोपदुपनिषद रथ से उतर कर नीचे घोट के बैठ गए, बोले होगा नहीं मेरे से। इससे महाशोकग्रस्त, भयाग्रस्त और मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान ने बोले, अरे अच्छा बात, दोनों पब्लिक के बीच में 18 अक्षौणी सारे टारगेट हमको देख रहे हैं, क्योंकि हुसिल बच चुका था, लड़ाई का सिटी बच चुका था, सब वन पॉइंट पर आ चुके थे, अब बीच में भी आ गए और बीच में सब देख रहे हैं, अरे बीच में क्यों आ गए दोनों, क्यों आ गए, और आ करके नाटक रो रहा है, बट रहा है, होगा नहीं मेरे से। ऐसे हाल किया अर्जुन के, भगवान कहते क्या बोर कर रहा है यार, बीच में ला करके सारे दुनिया लोग देख रहे हैं, इस तरफ से 11 अक्षौणी, एक तरफ से 7 अक्षौणी लोग पूरे नजर पड़ा है, तो बीच में ये रोना धोना। तो इनको इस प्रकार विषाद से, इस प्रकार मोह से, इस प्रकार अज्ञान से, दुख से, जो कोई डिसाइड नहीं कर पाता, इतने प्रकार संदेह से भरा पड़ा था, क्या करूं क्या ना करूं कैसे करूं, इस प्रकार महामोह से जो पड़ा था अर्जुन विषाद, तो उनको वहीं खड़े खड़े स्टेयरिंग पकड़े हुए हाथ में, वहीं पे गाड़ी में खड़े खड़े ड्राइवर सीट में कुछ बोल दिए, कोई ऐसे क्लास में व्यासासन लगा करके अच्छा से गालीचा बिछा करके बैठने सुनने वाले व्यवस्था किया गया, ऐसे कुछ नहीं, युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध की सुई सुई से बच चुका था, इसी बीच में खड़े खड़े कुछ बोल दिए, वो जो बोले ये भगवान की गीत जो गाया हुआ, थोड़े बहुत गीत गाए, इसी में कुछ मिनट के अंदर अर्जुन ने खड़ा हो गया, बुखार उतर गया, मोह दूर हो गया, शंका दूर हो गया, भय चला गया, पाप करना कुछ भी करना बिल्कुल करिष्ये वचनंतव, फिट बोलो अभी क्या करो, आई एम रेडी। कुछ मिनट में क्या हाइडोज है सच्चाई, आप सब सोचिए, आप मुझे शर्म कर में बोलने के लिए आप मत बोलिए, अपने आप को ऑनेस्टली पूछिए, क्या आप में से सभी इस शोक से, इस मोह से, इस भय से ग्रस्त नहीं है? बोल, आप सब क्या बोलते, अनिष्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, ईमानदार है आप लोग, मान जाते हैं, सही बात है, फंसे में बुरी तरह से, हम लोग सब बुरी तरह से फंसे हैं, फंसे तो हैं, लेकिन हमारा समस्या क्या है, हम एडमिट नहीं करते हैं, हम फंसे हुए करते हैं, करते हैं। अगर अभी भी आपको आप पूछेंगे, भाई साहब हाउ आर यू, कैसे हैं, आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे ना बहुत अच्छा, अभी बोलते हैं कि हम अच्छा नहीं फंसे हुए, अब बोलेंगे बहुत दान दिखा देंगे, अब हम जानते हैं आर्टिफिशियल है, मैं भी दुखी आप भी दुखी, लेकिन क्या करें, दिखाना नहीं चाहते हैं, हम ओके ओके, अरे क्या ओके रो रहा है, ओके बोलता है मतलब हम ये प्रकाश नहीं करना चाहते कि हम फंसे हुए हैं, दुख में पड़े हैं, यही हमारा समस्या। सच्चाई बात तो ये है, जो बीमारी है, रोगग्रस्त है, महारोगी है, और कभी स्वीकार नहीं करता कि बीमारी हूं करके, तो उसको ठीक कर सकता, ये शायद समझ, छोटा दूसरा उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति सोया हुआ है, अब टाइम होगा तो बोले जगा दो उसको, तो आप जाकर उसको जगा सकते हैं, जग जाएगा, उसको आप जगा करके उठाएगा, हिलाएगा, कुछ हल्ला गुल्ला पानी फानी फेंक देगा, जग जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सोया नहीं लेकिन सोने का नाटक कर रहा है, उसको जगा सकते हैं अपने? साक्षात रुक्मिणी द्वार के अधीश आकर जगा नहीं सकते, क्योंकि उस व्यक्ति सोया ही नहीं, वो जगा हुआ है, सोने का नाटक कर रहा है, सोया थोड़ी। ऐसे हम लोग सब रो रहे हैं, दान दिखाने का नाटक कर रहे हैं कि हम सुखी हैं, ओके, ये नाटक है, सरे सर मर रहे हैं दुख में। तो जब इस प्रकार अभिनय करेंगे सोने का, तो कोई जगा सकता? तो इसलिए भगवान भी कहते हैं कि भैया मैं अर्जुन को समझा दिया लेकिन आप लोग को नहीं, क्यों, क्यों आप हर किस मानने के लिए तैयार नहीं, क्यों दुखी है करके, अर्जुन तो कम से कम आक्षण करके दिखा भी दिया, नहीं मर गया मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसको ठीक कर दिया मैंने कुछ मिनट में, ऐसा मेडिसिन दिया, हाई डोज दिया, वहीं पर वहीं भी खड़ा हो गया। लेकिन आप तो मानने के लिए तैयार नहीं, जिंदगी भर मर रहे हैं हर पल, लेकिन बोलते नहीं हम डायम ओके। अरे तब कैसे ठीक किया जाए? तब बोल रहे हैं तो हम हमारा क्या समस्या है, हमको क्यों बोलते तकलीफ, हमको तकलीफ नहीं, हम ठीक ठाक है। बोला अच्छा ठीक ठाक है। तो इसलिए भगवान ने कहते हैं कि जो चार समस्या है तुम हाल किया, तुम्हारे पिता दादा परदादा उनसे पूछो और आने वाले जो भी होंगे, केवल आप नहीं, आपके जितने बड़े बड़े लोग हैं, नेता और मंत्री और ऊपर से और जितने हो सके, किसी को भी पूछ करके देख लो, कोई एक भी व्यक्ति, कोई प्रोफेसर इंजीनियर वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर, कोई भी, ये जो चार प्रॉब्लम का भगवान ने लिस्ट दिए, बोले इसी से बच करके कोई है उसका समाधान किसके पास है? क्या प्रॉब्लम होता है? बोले एक है जन्म, दूसरा है मृत्यु, दूसरा है बुढ़ापा, जरा मतलब व्याधि, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, आया ना समझ में? चारों जन्म होना, मरना, बीमारी होना और बुढ़ापा। कोई चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई हो जाए, नहीं हो गया चार उसको क्या बच जाएंगे उससे? कोई कितने बुद्धिमान डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट से बच जाएंगे? कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता इस समस्या से। तो भगवान कहते हैं कि इसी चार को सोचो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है? दुख दोष अनुदर्शनम। उसको अनुदर्शन मतलब बार बार देखो, सोचो उसको, यही यही समस्या, इस समस्या को तो समाधान नहीं किया, वो बोलता है कि काम बन गया मेरा। जब तक इसी समस्या को हल नहीं कर पाएंगे, और इस समस्या का हल किसके पास है? पूरी भौतिक संसार में ढूंढ कर आ जाओ, कहीं नहीं मिलेगा हल। यही भारी समस्या का हल केवल इसमें मिल जाएगा, है ना? बोलेंगे अरे मिल जाए कोई प्रमाण, प्रमाण बता रहा हूं ना, अर्जुन को खड़ा कर दिया ना मैंने, उन्होंने बोला कोई सिरिंज लगाया ना, एडमिशन कराया ना, पट्टी चढ़ाया, कुछ किया, वही सीट में बैठा था मैं, ड्राइवर सीट में बैठा था, वही क्यों ही खड़ा हो गया? सामने पढ़कर देखो, पहले अध्याय देखो अर्जुन का रोल क्या है, अब 18 अध्याय में देखो अर्जुन कैसे फिट है ना, बिल्कुल खड़ा कर दिया उसको। तो जो वो खड़ा हो गया तो आपने क्यों खड़े होंगे, है ना? भगवान ने कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैं तो जब ये ज्ञान बताने जा रहा हूं, ज्ञानं तेहं सवि ज्ञानं इदं वक्ष्यामि अशेषत यज ज्ञात्वा न, क्या है कि जिसको जानने के बाद फिर कोई जानना जरूरत नहीं पड़ेगा। जज गत्वा नेह भूयन्यो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कहते होगा? बोले मुझे जो भी ऐसे ज्ञान कहूंगा, जिस ज्ञान को आप जान लेने के बाद फिर पूरी दुनिया से आपके जीवन अवधि से किसी प्रकार किसी काल में किसी देश में किसी पत्र में कोई चीज जानने का बाकी नहीं रहे, एवरीथिंग विल नो। जस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवंती, जिसको जानने के बाद सर्वज्ञ हो जाएंगे आप, हो जाएंगे सर्वज्ञ। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं चाहेगा उसको जानने के लिए, बताइए कोई? आप बोले मैंने हम नहीं जानना चाहते, एक पॉइंट जानो ऑल नोयर, सर्वज्ञ हो जाए, कोई फैकल्टी नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं अब नहीं जाने, सब जान जाएंगे एक चीज जानने से, है ना? नहीं रहस्य है, कुंजी है ना? नहीं, जिस ज्ञान को अब जान लो खत्म, और कुछ बाकी नहीं रहा जानने के, एवरीथिंग आप जान जाएंगे। तो आपका मन में सचमुच होगा नहीं, अरे तो जान लेना चाहिए, हम क्या क्या सब कितने सब्जेक्ट पढ़कर गए, क्या क्या करके आए, मथा पची, अब यही बाकी रहेगा इसको जान ले, सब जान जाएंगे, सबका पीछे क्यों जाए इतने सब्जेक्ट के पीछे, ओनली वन सब्जेक्ट बाकी सब इसी में आ जाएगा। तो जब आपका मन में भी सोचते हैं तो अर्जुन भी तुरंत बोला बताइए, अब एक बात है सर्वज्ञ हो जाएगा तो बताओ, फंसा हुआ उसे बताओ क्या है। लेकिन उसने से पहले अर्जुन बोला क्या सही में सर्वज्ञ हो जाना, हो जाएगा मतलब पूरा दुनिया के सर्वज्ञ, ना सर्वज्ञ कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा, एवरीथिंग कोई भी क्वेश्चन आए आंसर तुझे बताओ, यस ऑल नोवर हो जाएगा। तो बोले प्लीज बताइए फिर मैं इसको जान लूंगा, अभी रट लूंगा क्या फॉर्मूला है। तो भगवान कहते हैं कि भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि रे वच अहंकार इति अंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा। समझ में आता ना, खिति जल पावक गगन समीरा, ये पूरे संसार ब्रह्मांड का जो इंग्रेडिएंट्स है यही है ना, उससे बचकर के शरीर कोई भी गाछ लता पेड़ पौधा चेयर मेज टेबल घर बाड़ी दुनिया पानी जल पत्थर जो भी आप देखें जो आप सुने जो देखेंगे और सुनेंगे भी उसी का सारे बनावटी तो इसी में हुआ ना, पांच महाभूत से बने हैं भूमि आप अनल वायु और खंग। उसके ऊपर में बोले वो तो बना है तो भौतिक तत्व है लेकिन हम तो कुछ एक्स्ट्रा है, आप क्या इसी श्लोक में उसको बता दिए आठ बताए, मन बुद्धि और अहंकार वो हमारे से आठ हुआ है, बाकी सारा जो जड़ जगत है वो पांच से बना है और हम चेतन में और तीन एक्स्ट्रा डाला गया, तीन मैटर तीन तत्व तो और डाला गया है ना, हम आठ वाले हैं वो भाई वो पांच से बने हैं, बाकी दुनिया से पांच से बना है, हम आठ सब्सटेंस से तीन तीन पॉइंट ज्यादा है हमारा। हाँ बोलते हैं ये आठों को आठ भूमि जल और अग्नि वायु और आकाश और मन बुद्धि और अहंकार ये मेरा भिन्न प्रकृति है, मेरा भी नहीं है। जैसे भिन्न प्रकृति मतलब कैसे कहते हैं, जैसे आप सभी को मैं उदाहरण दूं आप समझ जाएंगे, आप सभी का नाखून है ना, नख, ये नख आपके शरीर का अंग है ना, नहीं मानते ना, नहीं मेरा शरीर का अंग है, अंग है उसको काट कर फेंक देते हैं अपने, कोई शोक भी नहीं करते कोई दुख भी नहीं करते, ओह आह नहीं करते, उठाओ बढ़ गया फेंको उसको, आपके शरीर का अंग है आपके खान पान से प्रविष्ट होकर बढ़ता है लेकिन उसको ऐसे काट कर फेंक देते हैं, ये आपके भिन्न शक्ति है आपके ही है लेकिन आपके बहिरंगा प्रकृति है, आपके एक्सटर्नल एनर्जी लेकिन नख काटते समय थोड़ा जब बड़र मिले ओ नहीं आगे काटो, ये तटस्था बीच में लगता है, अंदर तो अंदर वाले अंतरंग है ही, सेम आपके बाल है ये हमारे शरीर का अंग है, काट कुट के फेंकते हैं जो करते हैं कोई शोक हो नहीं उसके लिए, लेकिन थोड़ा इधर लगे बड़र में नहीं लगता है तट में। तो ये भी हमारा भी जैसे नाखून और बाल उसको कोई गिनती करते हैं हमने कोई मूल्य देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये जो सारे भौतिक ब्रह्मांड टोटल और आप में से जो सब हैं मन बुद्धि अहंकार वाले वो सब मेरे नाखून और बाल के बराबर है, भिन्न प्रकृति। तू अगर मुझे जान जाएगा तो मेरे थर्ड क्लास प्रॉपर्टी नहीं जान जाएगा है ना, नहीं ऑटोमेटिक जान जाएगा, तो कहा को मुझे नहीं जान जाता, मुझे जान लो खत्म का, कोई क्वेश्चन एक ही आंसर कृष्ण बस। प्रभुपाद जी ने एक बार कुछ शिष्यों के साथ कभी कभी वृद्ध समय मॉर्निंग वॉक करते थे, एक मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो उनके पीछे कोई वैज्ञानिक शिष्य भी उनके साथ जाया करते थे, तो एक बगीचा होकर गुजर रहे थे तो बगीचा में कुछ गुलाब के फूल खिला हुआ था सुबह सुबह, तो कोई शिष्य ने वैज्ञानिक से बोले प्रभुपाद सो नाइस रोज, सो प्रभुपाद ने लाठी लेकर बोले दैट इज ना यस सो नाइस रोज, तो प्रभुपाद ने बोले यस दिस इज कृष्णा क्रिएशन, निशीच। तो घूम करके बोले, बोले आप लोग वैज्ञानिक हैं, आपको मैं एक बात पूछता हूं, आप अभी जितने इस अमेरिका में जितने वैज्ञानिक हैं, सारे वैज्ञानिक इकट्ठा हो जाए टुगेदर, और आपके जितने लैबोरेटरी में जो जो सब केमिकल जो सब है यंत्रपाति सब इकट्ठा कर लीजिए, मैं आपको 2-4 साल टाइम देता हूं मिल करके एक रोज ऐसा फ्रेश रोज बना सकते हैं, एक कैसे फ्रेश खिला हुआ गुलाब बना दें, आपकी बुद्धि बोलो, 5 साल लगाओ प्रोजेक्ट ले लोगे एक गुलाब के लिए। सारे वैज्ञानिक इकट्ठा हो करके सारे केमिकल और यंत्रपाति सब लगा करके एक गुलाब, चलो एक गुलाब ने एक पेटाल ऐसा ही फ्रेश सुगंधित और कलर किया हुआ मुचू, बोले आप इतने अहंकार क्यों कर रहे हैं, एक फूल के पत्ते के बनाने के लिए आपके संपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान फेल, इसी के बराबर नहीं है। और आप मूर्ख और आजकल कभी सोचे इस बात को कि एक रात में मिलियनस बिलियन सब रोज कौन साइंटिस्ट खिला देता है, प्रत्येक में अलग अलग कलर भर करके अलग अलग सुगंध भर करके खिला देता है, एक पेड़ में 50 फूल खिल जाता है, कौन? इसके बारे में कोई सोचने के लिए आपको बुद्धि में दिमाग में नहीं आया, हु इज दैट फेलो? मैं तो नहीं कर पाऊंगा, कौन कर रहा है एवरी डे, उसको नहीं देख रहे हैं? और बड़े अहंकार मारते हैं, हम इतने अभी तभी जमाने 60s में वो बोलते थे कि हम जान गए क्या H2O, हम जल तत्व समझ गए, क्या समझ गए ना, 2 अम्लजान यही ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के कण मिलने से 1 जल कण बनता है। बोले रास्कल क्यों, बोले बुद्धू यही तो आपके दुर्बुद्धि है, बोले एक कण जल के लिए अब समझ गए ये 2 कण, ये 2 कण तेरे बाप का हाइड्रोजन है तेरे बाप का ऑक्सीजन है, मुझे प्यास लग रहा है 1 ग्लास पानी चाहिए, बना दो ला करके, कोई साइंटिस्ट है बना दे कि तेरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहां का, तू बुद्धू ये नहीं समझ रहा है कि इतने समुद्र भरा हुआ है, नदी भरा हुआ है, तालाब भरा हुआ है, कुआं भरा हुआ है, कौन साइंटिस्ट इतने ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलाकर कहां पे मिला है कैसे किया, उसके बारे में नहीं बुद्धि काम कर रहा है। हाँ एक बिंदु जल के लिए मर रहा है तुम इसी के लिए, बोलता है कि महाज्ञानी, कितने अज्ञान है बताओ, तुम्हारा सामने कम से कम डेली 4 लीटर पानी पी जाता है, ये पानी कहां से आता है, नहाता है इतना कपड़ा धोता है, कौन इतना पानी दिया, कहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन आया, कौन मिला है कैसे किया, इस बारे में नहीं सोचते। हमारा समस्या ही है हम कभी मूल को नहीं देखते हैं, हमेशा आधा से पकड़ते हैं, हमारे वैज्ञानिक को ही बहुत मथापच्ची करते हैं लेकिन रूट को नहीं जाएंगे कभी भी, ओरिजिन को ढूंढने देखेंगे देख नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो ज्ञान हमको प्राप्त किया गया ना, हमको ट्रेनिंग किया गया इसी से, इसी इनकम्प्लीट नॉलेज, केवल एक किरानी बनाने के लायक, उसके आगे कुछ नहीं, इतना ही कर सकते हैं बस। जो भी वैज्ञानिक मैथमेटिक्स या फॉर्मूला अभी तक पढ़े हैं, आप लोग से थोड़े बहुत पढ़े होंगे, सबके शुरुआत होता है सपोज A=D=D, है ना, नहीं मान लो से, मान लो का क्या अर्थ होता है, कोई बेस होता है उसका, अरे मान लो क्या है, आप बोलेंगे आप तकलीफ में पड़े, मैं आपको चेक देता हूं, अभी अकाउंट नहीं खुला है बैंक में, दे देता हूं ब्लैंक चेक, अब जब खोलूंगा भविष्य में ले लेना, आप लो ठीक हो जाओ खुशी में जाओ, आप खुशी होंगे? अरे सपोज से दे रहा है व्हाट इज दिस, और उसी से पूरे हमारे पद्धति सारे ज्ञान विज्ञान उसी में टिका हुआ है, शुरुआत कहां से, उसका बेस कहां है, न्यू सपोज मान लो से, मान लो को टिका, मान लो तो सपना ही है, सपने के ऊपर हम अपने ज्ञान को मानेंगे रहेंगे कि क्या मूल्य है उसका? तो हमारा जो वैदिक ज्ञान भगवान यीशु कहते हैं ऐसा नहीं, ठोस ज्ञान बोलते हैं, ये सारे दुनिया के रंग रूप जो भी देख रहा है सबके इंग्रेडिएंट्स मैंने बनाया, मैं कर ही रहा हूं, तो मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान कहते थे सुबह उठता है तू कैसे नहीं मानेगा सारे, बोलते रसोहम अपसुकुंतेय प्रभास्मि शशि सूर्य, सुबह उठ करके पानी पीते हैं, पानी क्या है, पानी के अंदर जो प्यास बुझाने का शक्ति जो रस है वो मैं हूं, इसलिए दुनिया पानी पीता है, मैं नहीं रहता कोई पानी पीता नहीं। और आप लोग इतने पानी पिएंगे, पानी में नहाएंगे, उपचार करेंगे, इसलिए मैं जानता हूं, इसलिए पानी भर के भी रखा हूं स्टॉक, ये मेरा अरेंजमेंट है। सारे ब्रह्मांड बनाया, 75% पानी रखा। आप हमारे छोटा सा आश्रम 20 लोग रहते हैं, 5-5 हजार वाला 4 टैंक डाल के रखे हैं, उसको डेली भरना पड़ता है। तो भगवान बोले मैं तो करोड़ों अरबों जीव जंतु रखूंगा, उनके पानी के लिए व्यवस्था क्या करूं, तो 10-5 सागर बना दिए, समुद्र बना दिए, उनका टैंक ये है भगवान के बना वाटर टैंक, समुद्र बना दिए, बोले पानी तो सड़ जाए, खराब हो जाएगा, इतने विस्तार तो नमक डाल दिया, खराब नहीं होगा, नमक डाल दिए, करोड़ों साल तक रहे, कोई खराब नहीं, बिगड़ेगा नहीं, नमक डाल के रख दिए पानी टैंक में। लेकिन हम तो पी नहीं सकते, बोले उसको फिल्टर करूंगा, फिल्टर के लिए ऐसे व्यवस्था है, क्या बताए, ऐसे व्यवस्था कर रखे। कभी कभी मैं एक व्यक्ति को एक बार पूछा, हम जो प्रचार करने जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या है राम राम करने से होगा, गीता ले आते हैं बेचने के लिए, राम राम करने के लिए, मैं फिर आप बताइए सर, अरे हम ऐसे हम ईमानदारी से जीते हैं, हाँ अपना टैक्स भरते हैं टाइम पर, हम कभी किसी से बुरा नहीं करते हैं, लोगों से नहीं करते, ईमानदारी से जीते हैं, किसी जिसको जितना भलाई होगा करते हैं, हम क्या ईमानदारी है ना, और क्या, हम कभी इलेक्ट्रिक चोरी नहीं करते हैं, बिल्कुल मीटर में जो बिल वही बिल देते हैं, जो हमारा इनकम टैक्स बनता है वो टैक्स देते हैं, और हम सीनियर सिटीजन है, अपना भी हमारा सुविधा प्राप्त करते हैं, सो करते हैं, इसे करते हैं। मैं बोला सर बुरा ना माने तो एक बात बताएं ना, क्या आपके भाषा में ईमानदारी का अर्थ क्या होता है, किसको ईमानदार कहते हैं अपने? तो बोला ईमानदार, ईमानदार मतलब वही है जो माने हमको, हम जहाँ से कुछ लेते हैं हम उसको पूरा पूरा देते हैं, हम ठगते नहीं, छल कपट नहीं करते। आप लोग भाषा ईमानदार का मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा जब समझते होंगे ना, यूज करते हो ना शब्द, तो क्या उसका मतलब होता
है? लेकिन उसका जो सांसारिक बात है वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन जो तात्पर्य है कि प्रकृति के प्रति ईमानदार होना चाहिए।
नहीं, ईमानदार शब्द का अर्थ क्या होता
है? ईमानदार मतलब जो आपका सत्कार है, जहां से आपको लेना है या देना है, उसको अपने सात्विक विचार से करना।
और कोई छोटा सा शब्द है, आप इतना नहीं जानते,
वो नहीं होना चाहिए।
ये मैं ईमानदार की बात पूछ रहा हूं,
जो किसी के साथ छल कपट ना करे, कुछ ना
करे। और कोई प्रभु जी ने सही बताया, हाँ जी,
ईमानदारी मतलब धर्म है।
यस,
ईमानदारी का मतलब धर्म है, धर्म से चलना,
धर्म के ऊपर चलना।
सबसे पहला अपने आप से ईमानदार बनना चाहिए।
ईमानदार का अर्थ क्या होता है? पर चलना बात बात है,
जो सच्चाई के रास्ते में बिल्कुल जो हमारे आत्मा भी पार करें, उसके अकॉर्डिंग काम करें, तो ही ईमानदारी है। सेम टू सेम, जैसे माने कि ये काम नहीं करनी, आत्मा ने कह दिया अंदर से कि नहीं करनी, तो नहीं करनी।
सही अर्थ किसने एक कहा था मुझे, हाँ,
धर्म और सत्य,
क्लीन कॉन्शियसनेस, पवित्र विचार,
सत्य सत्य बोले, सत्य हर एक चीज सत्य,
वो तो सत्य है। असली में ईमानदार का बेस्ट मीनिंग है बेईमान ना होना, जो बेईमान नहीं है वो ईमानदार। आप परिभाषा मत मचाइए, आप अच्छे तरह से जानते हैं बेईमान क्यों, हम सभी ईमानी हैं।
तो बेईमान का क्या मतलब है सर?
हम है प्रकट उदाहरण, हम बेईमान का असली उदाहरण है, आप किससे मदद लिए उसके बिना जी नहीं सकते हैं और उसको भूल गए, कृतघ्न। बेईमान का मतलब है कृतघ्न, समझ में? आप अच्छे तरह से जानते हैं बेईमान का, हम उसी में चलते हैं ना सब। तो मैं पूछा, अच्छा ठीक है, आपने आपके ईमानदार मानते हैं, ईमानदार का वो मुझे परिभाषा बताया कि अगर मैं किससे हेल्प लेता हूं, मैं उसको हेल्प देता हूं, मैं उसको मानता हूं, उनके हिसाब से सही कहा। मतलब अच्छा आप मानते हैं कि वो मुझे बोला कि मैं टाइम पर इलेक्ट्रिक बिल देता हूँ, कोई चोरी जारी नहीं करता हूँ, टाइम पर जो टैक्स देता हूँ कोई लुपा छुपा नहीं करता हूँ। मैं बोला अच्छा बात है, इसी को आप मानते हैं ईमानदारी दो काम करके। एक बात आप कहिए, ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप आपके घर में लगाया, इलेक्ट्रिक लाने के लिए पैसा जमा किया, फिर वायरिंग करने के लिए कितना पैसा लगाएगा? केवल वायरिंग की तो चलेगा ना, फिर पंखा लाइट कितने पैसा ला कर लगाया और कनेक्शन कराया इतने खर्चा करके, और वो भी सब समय रहता क्या? कट ऑफ होता ना, नहीं पावर ऑफ कितने बार होता है? इन्वर्टर लगाना पड़ता है फिर भी नहीं काम बनता, और इसी में इतने कटे फटे छटे गड़बड़ होकर आता, इसी को पेमेंट करके आप बोलते हैं कि मैं ईमानदार टाइम पर पेमेंट कर देता हूं। लेकिन अभी तो आप किए घर बनाकर तभी लिए, आपके जन्म से नहीं, आपके जन्म से आपके पिता के, दादा के, उनके दादा के, उनके दादे के, उनके परदादे के जमन से कनेक्शन मिला हुआ है, एक भी खर्चा पैसा नहीं किया आपने वायरिंग के लिए भी। लाइट मिल रहा है, वो लाइट एक सेकंड के लिए फ्यूज नहीं होता, बंद नहीं होता, नॉन स्टॉप एक लाइट फिट किया गया, पूरे संसार को चलाता है नॉन स्टॉप, कभी बंद नहीं, संडे मंडे ट्यूसडे के बंद नहीं, उसके लिए कोई वायरिंग नहीं करते, कभी कनेक्शन नहीं लेते, चलते। समझ गया ना कौन सा लाइट है? जिस लाइट के लिए आप दोपहर में आए लव फिस्ट में, उस लाइट का कनेक्शन कैसा है, कौन किया, उसका बिल के बारे में सोचे। ये तो आगे इतने कटे छटे बीमारी बिल को देख रहे ईमानदारी बनते, वो उसका बिल कभी दिया? अगर वो बिल एक बार भेजेगा दे पाएंगे? बोला आप ऐसे कैसे करोगे भाई, सच्ची बात है भाई। उससे अभी ये लाइट केवल रात में चलाता है, वो भी इतने कटआउट होता है, कितनी गड़बड़ी है, ये फूट जाता है, ये हो जाता है, इतने दोषग्रस्त इसी लाइट के लिए बिल देकर ईमानदारी मानते। ये जो लाइट नॉन स्टॉप मिल रहा है, उसके बिना तो मर ही जाएगा, लाइट वाला क्या करेगा? ये लाइट बंद हो जाए, लाइट में काम चले, इस लाइट के बिल के बारे में क्या सोचे आप ईमानदारी बनते? चुप हो गया। मैं अच्छा इसकी बात छोड़ देते हैं, आप और बताता हूं। जो आप बोलते हैं मैं खाना पीना समझ से बाजार से लाता हूं, बिल्कुल पैसा देता हूं, कोई टाइम से कभी लुचा चोरा नहीं करता, आपको खाने पीने के बाद छोड़ दो, जो आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है, हर मिनट में अगर सांस नहीं लेंगे मर जाएंगे, ये जो हवा है, जो वायु है, ये कौन सा फैक्ट्री से प्रोडक्ट हुआ था, कहां सप्लाई होता है, उसके लिए कुछ पेमेंट करते हैं आपने? अगर उसको बंद कर दे, बोला नहीं मैं सप्लाई नहीं दे, मेरा है तेरा है क्या, तो आपके ईमानदारी पर निकलेगा? पानी उनका है, हवा उनका है, भूमि उसका है, लाइट उनका है, उसके लिए कुछ पेमेंट किया, और कितने दिन से लेता है उसको, कब से, कोई डेट है? पूरा सपरिवार कितने हेरिडेटरी देखा जाए, कब से बाकी पड़ा है पाना आपका? सुन करके बोले लेकिन वो बिल तो नहीं भेजते ना, वो मांगते नहीं। बोले आपको कैसे पता नहीं मांगते, आप पता किए थे? कोई मांगते नहीं, आपको बराबर हेल्प करते हैं, आपको मांगते नहीं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? थैंक यू सर, आप एहसान मान लो। तो भगवान को आप नास्तिक प्रणाम भी नहीं करते, थैंक यू भी नहीं कहता है, नंबर वन बेईमान तो आप ही है, मान लो, उपाय नहीं ना मानने का, है ना? और बोलते नहीं वो तो, वो तो उनको जानते हैं वो मांगते कि नहीं मानते, वो मांगते हैं, पता करो इस उनके गीत में उन्हें जो बोले, उन्हें बोले हैं कि मन मना भव मद भक्त भव मद याजी मद नमस्कुरु, वे चार काम मेरे लिए करो, मैं तुझे पाल पोस के रख रहा हूं, हर गीज में तेरे सृष्टि सृजन से प्रलय पर्यंत में पाल रहा हूं बारंबार, मेरे लिए चार काम करो, ये तो उनका बिल है। इसी बिल को तो कभी सोचा नहीं, तो प्रणाम करने के लिए नहीं जाता, गालियां बकता है, तो किसी तरह से ईमानदार हो सकते। बेईमान के अगर प्रकट उदाहरण के देखे तो आप ही होंगे। तो अगर सचमुच हम कोई सत्य धर्म न्याय या ईमानदार बनना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले कम से कम आकर के मानना चाहिए, कान पड़े प्रणाम करना चाहिए, प्रभु आपके कृपा से जन्म मृत्यु समृद्धि वृद्धि सब कुछ, एटलीस्ट एडमिट दिस, और एडमिट करने के बाद जो वो कहते हैं उसको करने के लिए प्रयास करो। जब ये नहीं करेंगे तो कैसे कहा जाएंगे कि अब इंसान है, ईमानदारी है? तो इसी को कहते हैं, इसी ज्ञान को जो जान पाया वही सर्वज्ञ है। और इस ज्ञान को ढंग से जाने, बोलते हैं कि मैं इसी को रूप में दिया हूं, जैसे कोई बाजार से कोई प्रोडक्ट खरीदता है ना, आजकल कई प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल बुक आता है, यूजर गाइड, तो उसमें यूजर गाइड में दिया गया है कि ये वस्तु को कैसे यूज में लाएंगे, कैसे यूज करेंगे। तो हम जब इस दुनिया में आए, जो दुनिया के मैन्युफैक्चरर है, हमारा भी मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने एक यूजर गाइड दिया है कि इस दुनिया में कैसे रहा जाए, किस लिए रहा जाए, क्या काम किया जाए, कैसे आचरण व्यवहार, सारे कोड दिया गया है मैनुअल गाइड में। ये है मैनुअल गाइड, उसका यूजर गाइड। और उसको अगर आप यूज नहीं करेंगे, इसके बिना हमारा जीवन आचरण खाना पीना रहना व्यवहार सब गलत सलत हो रहा है, दिग्भ्रांत जीवन, किसी एक को भी सही से पता नहीं हम क्यों जी रहे हैं, कोई नहीं बता सकता सटीक हम क्यों जी रहे हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा विश्लेषण करेंगे उसका उत्तर निकला, मरने के लिए जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? मरने के लिए जी रहे, एंड वही है, वहीं पे सीन अप होगा, मर करके फिर जन्म होगा, फिर जिएंगे, लक्ष्य क्या है उसके बारे में सोचने के लिए फुर्सत कहां है किसके पास? फुर्सत ही नहीं। तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिए हैं, उसमें समझने का शक्ति दिए हैं, किस लिए दिए हैं? इसी को समझने के लिए, इसी को समझने के लिए दिए हैं। नहीं तो रही बात जो नहीं भाई उनको करें भाई, हमारा मेंटेन कैसे होगा, मेंटेन कैसे होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, आपके बिना मेंटेनेंस बंद हो जाएगा, इसी वजह से बहुत चिंता आपको। अरे मूर्ख, जिन्होंने आपको बनाया, जिन्होंने आपको यहां भेजा, चिंता उनको है ना आपको है? उन्होंने व्यवस्था करके भेजता है। आजकल को कंपनी आपको कहीं भेजता है, पहले से आना जाना रिटर्न टिकट खाना कहां रहेगा सर व्यवस्था करके भेजता ना, तो वो जब आपको भेजा है तो सर व्यवस्था नहीं किया क्या ना? हम कैसे विश्वास करें? विश्वास क्या प्रकट प्रमाण है। नीति शास्त्र में कहते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्बरो गीयते, उसका अर्थ है मेरा जीवन भर चिंता करने का क्या है, यदि हरि ही असली विश्व के चलाने वाले मेंटेनर है तो मैं कहां की चिंता, मैं कैसे चलाऊं, नकली बोल देने से थोड़ी हो जाएगा, कैसे होते हैं? तो प्रमाण देते हैं, कथं नो चेदर्भक अर्थे जननी स्तनंग निस्सरेत, बोलते हैं एक नवजात शिशु के लिए, बच्चा के लिए माता के स्तन से दूध कौन देता है? कभी सोचा? सभी ने दूध पिए, ना माता ना बच्चा को, दोनों कोई नहीं सोचे, ये कैसे बनता है, कौन बनाता है? हम भी खाते हैं दाल रोटी चावल, वो भी वही खाती है, हमारा तो दूध नहीं बनता, उनके दूध कैसे बना? हु इज कन्वर्टिंग ब्लड इंटू मिल्क? और भी उसी समय में, जितने समय तक जरूरत उतने समय तक, प्री अरेंजमेंट, मैं किसी को भेज रहा हूं, वो बेचारा रोएगा, खा नहीं पाएगा, उसके लिए लाइक कोई फूड नहीं है, तो बिल्कुल बीफिटिंग, जहां पे बटल निपुल मिल्क रेडीमेड करके पहले से व्यवस्था करके देते हैं, इतने परफेक्ट अरेंजमेंट उनके व्यवस्था है, जब जन्म होने के पहले से व्यवस्था किए पाले तो अभी नहीं पालेंगे? पाल ही रहे, हम मूर्ख नहीं मान रहे, तभी से पाल रहे, कौन किया था उसको? माता के बस है ना पिता के बस से ऐसा कर सकता, ना कोई डॉक्टर का बस है, तो कौन किया? कोई सोचे ही नहीं। चाणक्य जी कहते, इत्यालोच्य मुहुर मुहु हे जदुपते कमलापते, मैं इसी बात को बारंबार सोचता हूं, हाय जन्म के समय से भी आप मेरे मदद किए, जन्म के पहले से मेरा व्यवस्था किए मुझे पालन पोषण का, मैं मूर्ख क्यों इतने इधर उधर सोचता हूं? इसलिए मैं डिसाइड किया, इत्यालोच्य मुहुर मुहु, इसको बारंबार विचार करके, हे जदुपते कमलापते, सदा तव पादंबुज सेवनेन कालमया नियते, मेरा सारा जीवन केवल आपके शरण सेवा के लिए नौछावर कर दूंगा। आप ही सब करते हैं तो काहे को इधर उधर भटकूंगा, क्या जरूरी है। ये नीतिज्ञ व्यक्ति का ये निर्णय है। जो इस प्रकार स्तर में विचार में नहीं पहुंचे तो आपस में टेंशन में पड़े रहेंगे। तो इसी प्रकार समस्त प्रकार के शोक से, मोह से, भय से निस्तार पाने के लिए, वास्तविक ज्ञान को समझने के लिए और जानने के लिए, जिसको जान करके सर्वज्ञ बन सकते हैं। आप बोलेंगे ठीक है हम जाने सर्वज्ञ बन जाए, सर्वज्ञ बनने के बाद क्या करेंगे? सर्वज्ञ जो हो जाते हैं उनका क्या ड्यूटी होता है? भगवान कहते हैं 15वां अध्याय में, यो माम असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, मूढ़ मतलब मूर्ख, समूढ़ मतलब अच्छा तरह से मूर्ख, सम्यक मूढ़, असमूढ़ मतलब जो अच्छा तरह से मूर्ख नहीं है, जो विज्ञ है पंडित। यो माम एव, जो मुझे, जो मूर्ख नहीं है वहां, वो पंडित जो मुझे अगर जान लेता है कि मैं ही अकेले पुरुषोत्तम हूं, केवल इतना जो जान लेता, यो माम एव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, बोले जान गया तो फिर क्या करेगा उसके बाद? ना सा सर्ववित, वो सर्वज्ञ हो जाता है, कोई उसके जानने के लिए हुआ कि नहीं रह जाता ना, वो ठीक है सब जान गया फिर क्या करेगा ना? फिर सो सर्वविद भजते माम, फिर केवल मेरा भजन ही करेगा, सब जान गया और बाकी बोला और कुछ नहीं करना मुझे, कैसे के भजन करना? सर्वभावेन भारत, हर प्रकार से, हर भाव से, हर रस से मेरा ही भजन करे, वो ही जीवन के लक्ष्य। अगर इसी को जान ले, भगवान कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रं, ये शास्त्र का सबसे टॉप सीक्रेट पार्ट में बताता हूं अर्जुन, इदम गुह्यतमं, सुपरलेटिव डिग्री, इदम गुह्यतमं शास्त्रं इदम उक्त्वा मया नघ जस्मिन् ज्ञात्वा, इसको जानने के बाद कृतकृत्यस्य भारत, आप कृतकृत्य हो जाएंगे, जो करना था सब कृत्य हो जाए, सब कंप्लीट हो जाएगा, केवल भगवान की भजन करने से। भगवान के भजन कभी कर पाएंगे ना? आप जो सब जानकार हो जाएंगे, सब जानकार कब हो जाएंगे ना? भगवान के पुरुषोत्तम करने जाएंगे। ये है रखी अंतिम। तो इस प्रकार से हम सबको निवेदन करते हैं कि आप हर प्रकार से ईमानदार बन करके, सर्वज्ञ बन करके, और इस मनुष्य जीवन को, लक्ष्य को जान करके सफल करने के लिए जो कुंजी है, इसको जीवन के आधार बनाइए, अपने पास रखिए, उनके आधार पर चलिए, उनमें जो कोड कंडक्ट जो बताया गया है उसको चलिए, और चलना कोई भारी कठिन नहीं है। इसमें वही बताया बार बार कि चार काम मेरे लिए करो, वही मेरा बिल है, मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी, मत नमस्कुरु। कभी कभी मंदिर आकर भगवान को प्रणाम कीजिए, कभी उनको पूजा अर्चना में भाग लीजिए, उनको फेस्टिवल में, और उनका नाम जप करना, कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं, वो कर दिए, इतने में ही आप जीवन सुख और सफल और परमार्थ प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? अभी अभी 2 दिसंबर को इस भगवद गीता के जन्म तिथि है ना? नहीं, भगवान ने इस पवित्र मुख्यदा एकादशी तिथि पे कुरुक्षेत्र के युद्ध में इस भगवद गीता ज्ञान किए थे, उसका जन्म, इस दिव्य ज्ञान का जन्म वहीं हुआ था उसी तिथि में। तो हमारे संस्था की तरफ से कृष्ण भक्त लोग पूरी दम से लगते हैं इस गीता जयंती रूपी समय को उपयोग करने के लिए, पूरे महीना 2 महीना तक भगवद गीता की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं लोगों के पास पहुँचे, लोग उसको फायदा उठाए। तो इसलिए गीता डिस्ट्रीब्यूशन का माराथन होता है, भारी कंपटीशन होता है। माराथन का मतलब, माराथन शब्द का अर्थ है कम सोना, कम खाना, ज़्यादा काम करना, इसको कहते हैं माराथन, कोई एक विशेष उद्देश्य के लिए। तो मतलब इस काम के लिए, गीता वितरण के लिए हमारा खाना और सोना को कम करके उसी गीता वितरण में ज़्यादा समय लगाना। तो इसी प्रकार काम में जो कोई प्रचार में भाग लेते हैं भगवान उनके लिए पहले गीता में बोल दिए, कोई ये लोग ऐसा करेंगे, कुछ ग्रुप लोग होंगे, कोई संप्रदाय ये काम करेंगे, उनके लिए कुछ है ना, उनके लिए भगवान बोले 18 अध्याय का 66 नंबर 68-69 श्लोक देख सकते हैं अपने। भगवान कहते हैं नच तस्मात प्रियतमम, उनके जैसा मेरा कोई प्रिय ना हुआ ना होगा, जो इस प्रकार संकल्पबद्ध होकर के मेरा इस भगवद गीता के ज्ञान को जो दूसरे के पास प्रचार करने के लिए जा जाकर पूरी प्रयास करते हैं, ऐसे भक्त मेरा जैसे प्रिय ना के हुआ ना होगा। तो इस प्रकार बड़ी आसान से भगवान की सीजन है भगवान के प्रिय बनने का। आप सब भगवान के प्रिय, सब प्रकार से बहुत प्रिय बनना चाहते हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अब आ रहा है टाइम, अभी से तैयार हो जाइए, बस थोड़ी दिन में भगवान की बहुत नजदीक प्रिय बन जाएंगे, है ना। तो इस फायदा को जरूर उठाइए और संपर्क रखिए मंदिर से, जो जितने समर्थ है भगवद गीता वितरण में अपने भाग लीजिए। ऐसे हम कई समय आता है, अपॉर्चुनिटी आता है हमारे जीवन में, कई चीज किसको हम डायरी गिफ्ट करना चाहते हैं, एक डायरी खरीदेंगे, आजकल तो डायरी एक अच्छा डायरी खरीदेंगे तो कम से कम 250 रुपया एक डायरी आता है, और वो एक साल के बाद रद्दी में जाएगा, खत्म। ये डायरी देंगे कोई फेंक सकता उसको, कितने साल, 5000 साल से तो यही पड़ा हुआ, ये पुराना नहीं होता, नवनवायमान है वो, 250 रुपया के वजह से 110 रुपया के इजी डायरी किसी को दे दीजिए गिफ्ट, है ना। नहीं चाहे नया साल के गिफ्ट के रूप में हो, कई समय उपहार देने का हमारे पास है, कभी दिवाली गिफ्ट देते हैं, कभी क्या क्या गिफ्ट, कई प्रकार से विवाह के अवसर पर मैरिज गिफ्ट, वो गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, नाना प्रकार से उपहार, सारे उत्पटांग चीज देते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं, सारे ही नहीं, हमको भी बेकार करते हैं, उनको भी बेकार करते हैं, पैसा ही बेकार होता है। तो आपके श्रम को, आपके अर्थ को, आपके लक्ष्य को, आपके जीवन को सार्थक कीजिए, दूसरे का भी कीजिए, अगर आप इसी को आश्रय करेंगे, उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, केवल मैं गीता दूंगा संकल्प लीजिए, अगर मैं किसी को कुछ देना चाहता हूं केवल गीता दूंगा, और न ले तू नालायक है, बस लेना है तो मैं इसकी दूंगा, बोलेगा मेरे पास है तू और एक ले लो, जिसके पास नहीं उसको दे देना। अरे भाई कई हजारों लोग हमारे पास है जो चाहते हैं पढ़ने, लेकिन बेचारे के पास सामर्थ्य नहीं है, तू पूरा जिंदगी साल भर से 500 रुपया लग कर रखो, मैं 5 कॉपी लूंगा, ऐसे व्यक्ति ढूंढूंगा जो बेचारे नहीं, मैं उनको दे दूंगा। गीता दानंग महादानंग, क्योंकि सर्व ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और ज्ञान दान तो बढ़कर कोई दान हो ही नहीं सकता है, जितने सारे तप जब ज्ञान यज्ञ तपसा है, सर्वश्रेष्ठ गीता के अगर दान किया जाए तो इसी महायज्ञ में क्यों नहीं भाग लेंगे, कोई लकड़ी लाना नहीं पड़ेगा, हवा आग लगाना नहीं पड़ेगा, घी खरीदना नहीं पड़ेगा, 2-5 रुपया के 5-7 कॉपी ले लो, आप जब आपका समय सुविधा हो, ऐसा नहीं कि जब डेली जाकर डेली जाओ तो बहुत अच्छा है, अगर समय दो, नहीं हो तो कम ही सुबह सूर्य का देख करके सुबह उसी को दो। और ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण में आपको बता सकता हूं, एक व्यक्ति वो गीता उनको मिला था आज से लगभग 45 साल पहले, वो दुकानदार है, वो रखा था दुकान है, पड़ी है, पड़ा था, हाथ नहीं लगाया था, एक ऐसे समय आया वो गुजर गया, जो लिए थे गीता वो गुजर गए, उनके बेटा भी बूढ़ा होने लगा, उनके पोता जो लिया था गीता उनको कुछ से समय आया, वो खोलकर देखा इतने से पढ़ा है क्या है, वो पढ़ा तो हरे कृष्ण वाला हो गया। तो ऐसा नहीं कि केवल उनको तो ये नहीं पढ़ता है, काम नहीं करेगा, ये आपको भी बुद्धि नहीं लगाना है, उन गीता को पता है ये आटम बम है, कब समय आएगा टाइम बम की तरह वो भ्रष्ट होगा, और किसको उठाकर कहां तक ले जाएगा, ये जिस आदमी को चरित्र सुधार जो कर सकता है, कोई बड़े से बड़े हॉस्पिटल, कोई ऑपरेशन, कोई मेडिसिन, किसी उपाय से इस चरित्र परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, केवल ये कर सकता है, यही उसका उपाय है। तो ये मत सोचिए कि नहीं पढ़ पाता क्या करेगा, आपको क्या पता वो उनके हाथ से जाकर कहां पहुंचेगा और किसको परिवर्तन कर देगा, किसको भगवानमय बना देगा, और वो कितने को भगवानमय बना सकता है एक चीज से, 100 रुपया के कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो क्या क्या नहीं कर सकता वो। तो इसलिए इसको सोच विचार करो, जथाशक्ति जथासमर्थ लेकर के संकल्पबद्ध होकर कुछ करने के लिए ये महा अपॉर्चुनिटी गोल्डन समय आ रहा है। सब अपना अपने मन से विचार करें, कुछ कीजिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज ने इतना प्रेरणा दी हम सभी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आज शाम को हमने सेशन किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो इसीलिए हम सब को जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास करना चाहिए कि हमें इस भगवद्गीता को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाना है। और उस पर ऐसे कि आप में से कभी हमें बताया जैसे कि हो सकता आप ये विश्वास ना हो कि भी हम पता कैसे बांट सकते हैं। हमने आज तक एक नींबू नहीं बांटा है, धनिए का एक पत्ता नहीं बांटा हमने, और हमारे पास तो वो गुण ही नहीं है, वो स्किल ही नहीं है। तो कल हमें एक कहानी सुनाई थी चैनल अपनी समाज का, जो भक्त का नहीं थी उनके फिर से सुना रहे थे, जो कल थे वो सब सुने। एक भक्त ने एक मंदिर में गया, तीन भक्त थे, उनका नाम था रमेश, राजेश और नरेश। ठीक है, राजेश और रमेश तो एमबीए के मार्केटिंग में, और नरेश का वो बेचारा कुछ ऐसा कुछ था बेचारा सिंपल था। तो टेम्पो रेंजर ने सबको बुलाया कि भाई सब आ जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, समय हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग इकट्ठा हो रहा है, बहुत बड़ा टारगेट बनाया हमें, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो इस सबको बुलाया गया, रमेश गया, नरेश गया, नरेश शॉप गया, नरेश नरेश गया। तो नरेश गया, नरेश भी एंटर किया, अगला थोड़ा सा अगला को हरे कृष्णा। ओके, जब तक फॉर्म्स आ रहे हैं आप सबके लिए, तो तब तक हम कुछ अनाउंसमेंट्स कर देते हैं। तो डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स जो कि हम हर महीने करते हैं, हाँ, तो ये डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स की दो ऑप्शंस आपके पास, एक है 19 से 25 ऑफ दिसंबर, यानी
छह दिन लगातार हर रोज आपको आना है छह दिन, और ये भगवद गीता के ऊपर इतना जबरदस्त कोर्स है ये। इस कोर्स को हम बोलते हैं फेथ बूस्टर कोर्स, यानी कि आपकी श्रद्धा जो है बूस्टअप हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर सिग्नल कमजोर था तो बूस्टर लगाते ताकि सिग्नल स्ट्रांग हो जाए, तो बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। उस तरह से DYS डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स इज द सीक्रेट ऑफ आवर फेथ एनर्जी। तो इसीलिए प्लीज यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, जो कि 19 से 25 दिसंबर, यानी कि हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस मैरी क्रिसमस आप मना सकते हैं विद डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स। और एक और ऑप्शन भी है आपके पास, वो है वीकेंड कोर्स, यानी कि देखिए हो सकता है आप ऐसे सुपर डुपर बिजी हो कि आपकी नौकरी जो है 24 घंटे की है, ठीक है, और आप नहीं आ सकते रोज, तो उसके लिए फिर हमने वीकेंड यानी कि छुट्टी के दिन, संडे के दिन क्लियर करने होते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के फंडे, दैट इज संडे। तो आप संडे वाली ऑप्शन भी ले सकते हैं जो कि 7th of December से शुरू होगा। तो 7th, 14th, 21st, 28th, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इस तरह आप ये वीकेंड कोर्स में कर सकते हैं एनरोल, और 19 से 25 दिसंबर जो रेगुलर कोर्स है उसे भी एनरोल कर सकते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप ऐसे जो भक्त भाग लेंगे, वैसे सभी को भाग लेना है, यहां से कोई भागेगा नहीं, सबको भाग लेना है, ठीक है ना। हाँ, जिसको भाग नहीं लेना है हाथ खड़ा करो, जरा पकड़ लो इन लोगों को। उसके बाद 30th of November को वी आर डूइंग कीर्तन मेला, हरी बोल, ठीक है, नहीं करेंगे, ऐसे वेलकम करते हैं, कीर्तन मेला वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट कीर्तन मेला ऑन 30th of November। ये हुई ना बात। तो इसकी कीर्तन मेला बड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें हम कुछ इंटरनेशनल कीर्तनियास को बुला रहे हैं, हुआ लाइक वर्ल्ड फेमस कीर्तनियास, एंड हमने स्पेशली उनको इनवाइट किया आप सबके लिए, ताकि आप सब जो है भगवान के नाम की कीर्तन में नाच सकें और धूम मचा सकें। जो कीर्तन मेला के दिन नहीं नाचता या नहीं गाता, उसके लिए सिंपल है हमारा फंडा, एनीबडी नोज, सिर्फ 25,000 डोनेशन मंदिर के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको तन से सेवा नहीं करनी, नो प्रॉब्लम, धन से सेवा करो फिर, राइट। तो सारे दरवाजे बंद कर देंगे, जो नहीं नाच रहा होगा उसके बाद हम लेके पहुंचेंगे, सर ये दे दो, कैश दे दो, डीडी दे दो, चेक दे दो, कुछ दे दो, अच्छा सब चलेगा। सो आप में से कौन कौन है जो डोनेशन देना चाहेगा, कोई डोनेशन देना चाहता मंदिर को, तो हम बता कीर्तन में नाचोगे, नहीं आप कीर्तन में नहीं नाचोगे, नाचोगे ना, फिर डोनेशन दे नहीं पाओगे। चलो आप दोनों कर लेना, सो वट एवर, बट द पॉइंट इज दैट एवरी वन शुड सिंग एंड डांस ऑन द होली नेम, चैंट द होली नेम, सिंग द होली नेम, पुट असाइड ऑल द शेम, चैंट द होली नेम, बले बले चैंट द होली नेम, वाहू वाहू चैंट द होली नेम। ये पंजाबी गाना है, पंजाबी लोग हो ना आप सब, राइट। सो एवरी वन शुड सिंग एंड डांस ऑन द होली नेम विच इज ऑन 30th of November, 7 PM to 9 PM, एंड देन देयर इज प्रसादम, सो प्लीज डू कम। और एक स्पेशल स्कीम निकाली है हमारे लाइफ मेंबरशिप डिपार्टमेंट ने, जो कि इंस्टॉलमेंट स्कीम है, आप सबको पता है लाइफ मेंबरशिप का एक अमाउंट है, तो आप वो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, एंड यू कैन बिकम अ लाइफ मेंबर, ठीक है। सो फॉर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट आउटसाइड द स्टॉल, लाइफ मेंबरशिप स्टॉल, और साथ ही बुक्स जिनको लेनी हो तो बुक्स आप ले सकते हैं वहां से, बाहर से। तो ये जो हमने फॉर्म आपको दिए हैं, ठीक है, इसमें आपको अभी लिखना है, ठीक है, अभी हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे, तब तक आपको ये फॉर्म भरना है, हाउ मच यू आर गोइंग टू प्लेज दैट यू विल डिस्ट्रीब्यूट भगवद गीता। अगर आप रोज एक गीता डिस्ट्रीब्यूट करें तो महीने में कितनी हो जाएंगी, 30, तो किसी ने अगर 10 या 20 लिखाना उसको तो हम फाइन लगाएंगे, ठीक है। सो प्लीज डू मोर एंड मोर, यस, दिसंबर में 31 है, तो रोज एक गीता भी डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितनी हो जाती है महीने में, 30। तो एक भर के आ गया है, इनका नाम है संजीव कुमार झा, और ये करेंगे 108 इंग्लिश भगवद गीता और 501 हिंदी भगवद गीता, हरी बोल। इसे कहते हैं दम, कौन है भाई, यस, वेयर इज दिस डिवोटी, खड़े हो जाइए, आपका चांस और रोशन चेहरा सब देखना चाहेंगे, अरे पूरा दिखा दो चेहरा, ये तो अभी अष्टमी का चेहरा नजर आया सबको, पूर्णिमा का दिखाओ, पूर्णिमा, खड़े हो जाएगा बाजरा, हरी बोल। देखिए इन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई, और कोई, यस। तो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में प्लीज जरूर भाग दीजिए। प्रभुपाद जी से किसने बोला था एक बार, स्वामी जी आप कह रहे हो ये किताब बेचो, किताब बेचो, किताब बेचो, किताब बेचो, क्या चाहते हो आप, सब किताबी कीड़े बन जाए, ये चाहते हो आप? प्रभुपाद जी ने कहा इससे बढ़िया है कि वो किताब के कीड़े बन जाए, नहीं तो अगले जीवन में वो मल के कीड़े बनेंगे। तो क्या बना जाते हो, मल के कीड़े या किताबी कीड़े बता दो, आप इसे कौन कौन है जो किताबी कीड़ा बनना जाता है? ये हुई ना बात, वेरी गुड। तो हमें भी किताबी कीड़ा बनना है, औरों को भी किताबी कीड़ा बनाना है, ताकि हम अगले जन्म में क्या ना बने, मल के कीड़े या मॉल के कीड़े, है ना? मॉल की और मल की सेम स्पेलिंग है, MALL, मॉल मतलब मल, MALL मल, MALL मॉल। तो इसलिए हमें मॉल का कीड़ा, आई मीन सॉरी मल का कीड़ा नहीं बनना। या तो इसीलिए हमें मल का, हमें मल का कीड़ा नहीं बनना है, हमें कौन सा कीड़ा बनना है, किताबी कीड़ा। यस ओके, किसी और ने भरा फॉर्म? दरवाजे बंद करो पहले, सबसे पहले तो अभी जल्दी फॉर्म जमा सबमिट करेंगे सब। यस ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग, आप लोग प्रसाद पालो, लेकिन मेन गेट पे जो है हम आपको तभी एग्जिट करने देंगे जब आप हमें फॉर्म दोगे। आप बोलोगे प्रभु जी इतनी जबरदस्ती कर रहे हो आप हमारे साथ, ऐसे आप ऐसे कैसे अत्याचार कर सकते हो हमारे साथ, बार हमारा मंदिर है, हम कुछ कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस होने भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज की जय। योगेश प्रभु 51 इंग्लिश भगवदगीता एंड 51 हिंदी भगवदगीता, हरि बोल। कृष्ण प्रसादम की जाए। तो प्लीज अपने पेपर सबमिट करिएगा सो दैट हम आपसे फॉलोअप कर सकें रिगार्डिंग योर प्लेजिंग। हरे कृष्णा।
ज्यादा ट्राई करने की कोशिश करेंगे बट
वेरी गुड। राकेश गर्ग गुरु करेंगे 108 हिंदी भगवद्गीता, हरि बोल।